ओम शांति, ओम शांति। अभी का जो सत्र है वो है मुरली रिवीजन। तो मुरली रिवीजन में हम आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं, लेकिन वो लेन देन तभी संभव है जब सब आगे बैठेंगे। आगे की सारी सीट खाली हैं। आपसे निवेदन है कि आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली आप सभी ने सुनी, हम सभी ने सुनी, सभी को याद होगा। बाबा दो प्रकार के बच्चों को देखा। कौन से दो प्रकार के बच्चे? एक है सदा समर्थ और दूसरे कभी समर्थ और कभी। तो आप सब कौन हैं? सदा समर्थ वाले हाथ खड़ा करेंगे। बहुत सुंदर। क्योंकि आज बाबा ने सदा समर्थ वालों को ही देखा है, नहीं कभी कभी वालों को थोड़ी। सदा बन करके रहना है ना, सदा समर्थ। सदा का राज्य भाग लेना है तो सदा समर्थ। लेकिन बाबा ने कहा कई बार बच्चे चाहते तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ का आकर्षण भी कम नहीं है, वो खींच लेता है। कई बार हम कहते हैं चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। अगर हम चाहते नहीं है फिर भी व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, व्यर्थ के अधीन हो जाते हैं, कारण बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि मेजॉरिटी बच्चे किस बात में, किस बात को समाप्त कर दिया है, किस बात को समाप्त कर दिया है और किस बात में फेल हैं। अरे वो आगे अभी शुरुआत करो। हाँ, नहीं नहीं वो तो आगे है, अभी आप स्टार्टिंग में क्या कहा। अच्छा, विकल्प को समाप्त कर दिया है और विकल्प को तो समाप्त कर दिया है और जो संकल्प बोल कर्म इसमें व्यर्थ है ना, इसमें फेल है। संकल्प बोल कर्म में अभी तक व्यर्थ आ जाता है। जो बाबा का स्लोगन बाबा ने बताया ना, ना व्यर्थ देखना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है, इस बात में क्या है, फेल है। तो अभी क्या क्या करना है, फेल होना या पास होना है? पास होना है। तो क्या विधि बाबा ने बताई? हाँ, बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि मन बुद्धि को समर्थ स्थिति की सीट पर सेट कर दो। ठीक है ना, अगर पास होना है इनमें तो मन बुद्धि को है ना, उसको होमवर्क दो। समर्थ स्थिति में सीट, समर्थ स्थिति की जो सीट है उस पर उसको सेट करो। फिर बाबा ने उदाहरण क्या दिया? क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा तुम कौन हो। उसके पहले बाबा ने कहा तुम विश्व के आधार हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त हो, विश्व नव निर्माण करने वाले हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, ड्रामा के हीरो पार्ट धारी हो, अब चैतन्य हीरे हो। आप सोचिए जो इतने बड़े टाइटल ले हुए वो अगर आलस में रहें, अलबेलेपन में रहें तो क्या कहा जाएगा? वो वीआईपी। बाबा ने कहा वो तो वीआईपी हैं, लेकिन आप कौन हैं? कितने भी वी जोड़ दो आपके आगे। तो बाबा ने कहा आपके समय की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो कहने का भाव, बाबा ये चाह रहे हैं कि बच्चे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, है ना, अपने स्वमान में आओ। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे तुम विश्व के पूर्वज हो, कल्प वृक्ष की चैतन्य जड़े हो, तुम्हारे आधार पर ही तुम्हारी स्थिति डाउन तो पूरा विश्व है ना गिरती कला की ओर, हमारी गिरती कला तो सारे विश्व की गिरती कला, हमारी चढ़ती कला तो सारे विश्व की चढ़ती कला, हम तमो प्रधान तो सारा विश्व तमो प्रधान, हम सतो प्रधान तो सारा विश्व सतो प्रधान, हमारे ऊपर ही सारा। क्यों? बाबा ने कहा तुम कल्प वृक्ष की चैतन्य जड़े हो, तुम्हारे द्वारा ही बाबा सारे वृक्ष को सकास देता है, यदि तुम सूख गए तो सारा वृक्ष सूख जाएगा, तुम हरे भरे रहे तो सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा। बाबा भी कुछ नहीं कर सकता आपके बिना, और यदि चैतन्य जड़े ही कमजोर रहे, अलबेले रहे, सुस्त रहे तो सारे वृक्ष का क्या हाल होगा। बाबा ने कहा तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर, आप निगेटिव संकल्प कर रहे हैं ये नहीं सोचो कि हम अपना ही नुकसान, अपना अपने तक ही सीमित हो तो बात अलग है, लेकिन हम सारे विश्व की आत्माओं का नुकसान कर रहे हैं, प्रकृति को हम कमजोर बना रहे हैं, वातावरण को हम कमजोर बना रहे हैं, इतना हमारे ऊपर आधार है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा समय श्वास संकल्प कितना कीमती है, तो इसके ऊपर आप सभी चिंतन करेंगे। मन बुद्धि का टाइम टेबल, जैसे हम तन का टाइम टेबल बनाते हैं, इस समय हमें ये करना है, इस समय हमें मुरली सुनने जाना है, इस समय हमें कपड़े धुलाई करना है, इस समय हमें भोजन बनाना है, माताएं बनाती है ना, भाई बनाते, इस समय हमें ड्यूटी में जाना है, फिर ड्यूटी से यहाँ आना है, तो मार्केट जाना है, मार्केट माना, सारे दिन का हम टाइम टेबल बनाते हैं, तन का तो बना लिया लेकिन मन का, और मन का टाइम टेबल नहीं बनाते तो मन व्यर्थ देखने सुनने बोलने में बिजी रहती है। मैं देखता हूँ यहाँ पर जब गवर्नर मिनिस्टर कोई आते हैं तो उनका सारा दिन का प्रोग्राम पहले से ही लिस्ट में आ जाता है ना, लिस्ट बनाकर दे देते हैं, इस समय ये स्टेज पर आएंगे, इनका स्पीच चलेगा, इस समय डाइनिंग में जाएंगे भोजन करने, इस समय साइड सीन के लिए जाएंगे, सारे दिन का प्रोग्राम हो जाता है। अभी आप भी तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, आपका इस समय ये क्लास है, उस समय योग है, उस समय आप डाइनिंग में जाएंगे, आपका है, तो ऐसे जैसे यहाँ आपने बना के रखा है ऐसे घर पे भी बनाओ, है ना, घर को भी आपका घर क्या है, सेवा केंद्र, आप अपने घर को सेवा का स्थान समझो, और मधुबन क्या है, घर है ना। अच्छा, तो मन का टाइम टेबल, और मन का टाइम टेबल बनाने के लिए आप 31 दिसंबर 1970 ये अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा। अगर आपने ये मुरली अच्छी तरीके से पढ़ ली 31 दिसंबर 1970, आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की श्रीमत बताई है। आंख खुले तो पहला संकल्प क्या हो, फिर सारे दिन के पूरा कर्म, फिर रात्रि सोने तक। अगर हमारी दिनचर्या इस प्रकार से रहेगी तो व्यर्थ आ सकता है, व्यर्थ आने की मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि हमारा तन, उसमें बड़ा सुंदर बाबा ने बताया तन के साथ साथ मन है ना, आप तन से आप उठ रहे हो तो क्या सोचो, स्नान कर रहे हो तो क्या सोचो, मुरली सुन रहे हो तो क्या सोचो, है ना, कारोबार में आ रहे हो तो क्या सोचो, एक दूसरे से मिलते हो तो क्या सोचो, भोजन करते हो, बहुत सुंदर विधि बताई है। अगर कोई ये कहता हमारा योग नहीं लगता, ये मुरली वो 2-4 बार पढ़ ले, 5-6 बार अच्छी रीति पढ़ लो, आप व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त, योग बहुत सहज हो जाएगा आपका, ना आएगा व्यर्थ, ना फिर व्यर्थ संकल्प चलेंगे ही नहीं, फिर योग हमारा, योग में एकाग्रता हो जाएगी। योग क्यों नहीं लगता, हम यही बोलते ना व्यर्थ आता है, व्यर्थ का कारण क्या है, शुद्ध संकल्प की कमी। अच्छा, तो मन बुद्धि की दिनचर्या बनाएंगे, और दूसरी बात बाबा ने क्या बताया, दूसरा कारण क्या बताया? अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कि जो बाबा ने श्रीमत बताई है, उस श्रीमत प्रमाण, उस आज्ञा प्रमाण हम नहीं चलते, उस आज्ञा का हम अवज्ञा करते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम ज्ञान में इतने साल से चलते हैं, हम अमृत वेला भी उठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी का अनुभव नहीं होता, जो अनुभूति होनी चाहिए योग में वो नहीं होता। तो बाबा ने उस मुरली में यही बताया कि पास्ट के छोटे छोटे विकर्म, वो जो विकर्मों का बोझ है ना, वो हमें खुशी का अनुभव करने नहीं देता। एक सिंपल सी बात बता दूं, बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे जब तुम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो तो उस समय तुम विकर्मों से मुक्त हो। देह भान में आना माना विकर्म होना। अब इसी बात को ही सामने ले लो, हम सारे दिन में कितना समय आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं? जितना समय हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हैं, उतना समय ही हम विकर्म से मुक्त हैं। अगर देह भान में हैं, तो हमारे विकर्म हो रहा है। देह भान बस कुछ भी कर रहे हैं, विकर्म हो रहा है। तो आप सोचो, गहराई से ये सोचो ये बात, हम कितना समय आत्म अभिमानी बन करके रहते हैं, अर्थात हम कितना समय विकर्मों से मुक्त रहते हैं? अब दूसरी बात सोचो, एक तरफ हमें कितने जन्मों का विकर्म विनाश करना है? 63 जन्मों का। और भाग्य कितने जन्मों का बनाना है? 21 जन्मों का। इतनी बड़ी जिम्मेवारी कि एक तरफ 63 जन्मों का विकर्म विनाश करना, एक तरफ 21 जन्मों का भाग्य बनाना, और इस जन्म में भी यह छोटी मोटी भूलें होती रही, गलतियां होती रही, अवज्ञा होती रही, विकर्म होता रहा, तो हम अपने आप से पूछें, कब हम 63 जन्मों का विकर्म विनाश करेंगे, कब हम 21 जन्मों का भाग्य बनाएंगे? और बाबा कहते कि 63 जन्मों के विकर्म वो विनाश होने में टाइम नहीं लगता, वो तो सहज हो जाता है क्योंकि वो अनजान में किया। लेकिन इस जन्म में बाबा के बच्चे के बाद, बनने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, जानबूझ करके जो हम विकर्म करते हैं, उसका एक का 100 गुना। जब एक का 100 गुना प्राप्ति है तो है ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो एक बार मेरे ही मन में संकल्प चला कि 100 गुना प्राप्ति, ये हम बच्चे होशियार तो है ना, 100 गुना प्राप्ति ये तो मुझे समझ में आता है, हम बच्चे हैं तो हमारा तो अधिकार बनता है, लेकिन 100 गुना सजा वाला वो मुझे समझ में नहीं आता। हम बच्चे हो, हमारा बाप इस सजा, तो सजा क्यों मिलता है? तो इसमें बाबा कुछ नहीं करता, बहुत सुंदर कर्मों का सिद्धांत है। जैसे आपने, एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने मुरली क्लास में जाना चालू किया, आपको देख करके दूसरे ने किया, दूसरे को देख करके जितने लोग मुरली क्लास में जाना चालू करेंगे, आप निमित्त बन गए सबको लाने के, तो एक का 100 गुना प्राप्ति हो गया। आपने बंद किया, आपको देखकर दूसरे ने बंद किया, दूसरे को देखकर तीसरे ने बंद किया, आप चौथे ने, जितने लोग बंद करेंगे उसका बोझ भी हमारे ऊपर। कोई भी चीज, आपने सेवा की जिम्मेवारी उठाई, निमित्त बने हमें करना है, और आपके देख करके आपके जितने लोग पीछे करेंगे वो सब का शेयर आपके खाते में, उनका तो बनेगा ही, लेकिन आप अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बने इसलिए आपका ज्यादा। और आपने मना किया, आपको देख करके जितने लोग पीछे हटे मना किया, उनका उतना घाटा। तो है ना, अब ये हमें ये भी चेक करना है श्रीमत, अब इसके ऊपर आप चिंतन करना, बाबा की मुख्य मुख्य क्या श्रीमत है, कम से कम 10 बातें नोट करना, ठीक है। बाबा की मुख्य मुख्य श्रीमत 10 बातें नोट करना, और रोज रात में सोने के पहले एक एक बात अपने मन साक्षी होकर के अपने अंदर देखना, इस श्रीमत के अनुसार हमारी दिनचर्या रही, इस श्रीमत के अनुसार हमारी दिनचर्या रही, नोट करना। क्योंकि अभी डिटेल करने का समय नहीं है, आप खुद डिटेल कर लेना, आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा बस बाबा की आज्ञा पर चलना है। बाबा की आज्ञा पर चलना माना आज्ञाकारी बनना, माना क्या बाबा ने बताया, आज्ञाकारी बनना माना कदम पर कदम मिला करके चलना। जो बाबा ने जो किया, जैसे बाबा चले उसी अनुसार अपनी दिनचर्या बनाना। तो बाबा ने किसका उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाबा का, और किसका उदाहरण दिया, हाँ बाबा ने कहा देखो जैसे एक सजनी है तो उसको क्या शिक्षा मिलता है कि साजन के कदम पर कदम मिलाकर चलो। तो हम आत्मा क्या है, बाबा की सजनियां हैं, तो बाबा की क्या आज्ञा है, हम आत्मा सजनी के प्रति क्या आज्ञा है, बस बस पीछे कदम पर कदम मिलाकर जो बाबा ने किया, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये करूं वो करूं कुछ सोचने की, जो बाबा ने किया वही हमें करना है। सजनी का वो होता ना कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से, है ना। तो ऐसे हम बाबा के साथ, बाबा से मिला तो हमारा हर कर्म, हमारी हर दिन, हमारी दिनचर्या, हम कितने भगवान, अपने अपने भाग्य को देखो, अपने अमृत वेले से रात्रि सोने तक अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। अमृत वेले कौन उठाता है आपको, और पढ़ाता कौन है, खिलाता कौन है, हर कर्म में साथ निभाता कौन है, सुलाता कौन है। तो बाबा ने कहा अगर दूसरों से किसी से कहोगे ना कि मैं भगवान उठाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, सुलाता है, तो आपसे कहेगा क्या भगवान आपके लिए फ्री बैठा है क्या, तो क्या कहोगे। बाबा ने कहा नशे से कहो कि भगवान हमारे लिए फ्री बैठा है, इस समय फ्री बैठा है ना। बाबा तो कहता मैं इंतजार करता रहता हूं। अच्छा आगे बढ़ो। फिर बाबा ने कहा बड़ी बड़ी आज्ञा तो बच्चे पालन कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी आज्ञा, जैसे बाबा ने कौन सी आज्ञा बताई, पहली आज्ञा क्या बताई, हाँ पवित्र बनो, काम जीत बनो। तो इस बात में हमारी भोली भोली माताएं भी पास हो जाती हैं। जैसे बाबा कहते ना बच्चे लोहे के मोटे मोटे जंजीर तोड़ देते हैं और सोने के जंजीर में फंस जाते हैं। तो ये आज्ञा तो सब बच्चों के लिए बिल्कुल सहज है, लेकिन फिर दूसरी कौन सी बात उसमें जो फेल हो जाते हैं, क्रोध में फेल हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, बाबा मैं क्रोध नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा तो रोब दिखाना पड़ता है ना, रोब नहीं दिखाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा थोड़ा तो रोब दिखाना पड़ता है। अब रोब को पर्सनालिटी, ये तो पर्सनालिटी है ना, नहीं तो नौकर बिगड़ जाएंगे, थोड़ा आंख तो दिखाना पड़ता है ना। बाबा ने कभी दिखाया, हम कितने बिगड़े हुए थे लेकिन बाबा ने हमें, कितना कड़वापन हमारे पन, लेकिन बाबा ने, बाबा की मुरली ही स्टार्ट कहां से होती है, कभी कहा कड़वे बच्चे, मीठे बच्चे स्टार्ट, और मीठा बोल बोल करके बाबा हमें, हाँ। तो बाबा यही कहते हैं, ये अपनी चेकिंग करो। तो बाबा ने कहा रोब करने के लिए बाबा ने छुट्टी दी है क्या, दी है छुट्टी, चलो अच्छा एक पर विजय प्राप्त कर ली दूसरा चलेगा, ऐसा कहा है क्या, ये भी तो अवज्ञा किया ना। फिर दूसरी बात बाबा ने क्या बताई, अमृत वेला, अमृत वेला क्या अवज्ञा करते हैं, उठकर बैठते तो हैं लेकिन विधि से नहीं बैठते, और विधि से सिद्धि, जहां विधि है वहां सिद्धि है ना। बैठते हैं तो बाबा ने कहा शून्य अवस्था में चले जाते, पता नहीं चलता हम योग कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं। हाँ, और अगर कोई बाजू से जगाएगा भी तो उसको भी आंख दिखा देंगे, तुम्हें पता नहीं मैं कितना शांति का अनुभव कर रहा था, विघ्न डाल दिया, उनको पता भी नहीं कि हम नींद कर रहे हैं। ये होती अवस्था। तो ये विधि, अगर हम योग में नींद करेंगे तो हाँ हम दूसरों को विघ्न डालेंगे, वातावरण खराब करेंगे। अच्छा, फिर तीसरा बाबा ने क्या बताया, बाबा की आज्ञा है ना दुख दो ना दुख लो, तो इसमें हम क्या अवज्ञा करते हैं। हाँ, इतना तो ध्यान रहता है, बाबा ने कहा ना किसी को दुख ना दो, ये तो ध्यान रहता है, लेकिन ले लेते हैं तो लेना भी नहीं है ना, ना देना है ना लेना है, क्योंकि खराब चीज है, खराब चीज लिया जाता है क्या। छोटे बच्चे को भी खराब चीज दोगे तो उठा के फेंक देगा। तो फिर सार रूप में बाबा ने यही कहा कि अगर व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हो तो ये स्लोगन सदा याद रखो, ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ सोचेंगे, और ना ही व्यर्थ समय गवाएंगे। तो फिर आप क्या बन जाएंगे, समर्थ आत्मा, जो बाबा हमें देखना चाहते हैं वो हम बन जाएंगे। अच्छा, टीचर्स बहनों के लिए क्या बोला। हाँ, कंप्लेन नहीं लेकिन कंप्लीट। और बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ चरित्र बनाने वाली, अपना भी दूसरों का भी, डबल ताजधारी, माना जिम्मेवारी का ताजधारी, जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली, और सदा ओके का लेटर लिखने वाली, ठीक है ना। ओके के लेटर लिखने में क्या बच जाएगा, समय भी बच जाएगा और पेपर भी बच जाएगा, पोस्ट करने सब के आप एकानामी के अवतार बन जाएंगे।